ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए देश के बुनियादी उद्योगों की उल्लेखनीय वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक कुमार बिजॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कल जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 की तुलना में फरवरी 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में 6.7% की वृद्धि दर्ज हुई। फरवरी 2024 में कोयला, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, स्टील, कच्चा तेल, बिजली और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इन आंकड़ों की बारीकियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ है अर्थशास्त्री कुमार बिजॉय। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुर्खियों में कार्यक्रम में।
धन्यवाद मैडम।
आपसे जानना चाहेंगे ये जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं कोर सेक्टर की ग्रोथ के 6.7%, जो कि बताया जा रहा है कि 3 महीने का उच्चतम स्तर है, आप बता सकते हैं कि पूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये आंकड़े कितने महत्वपूर्ण है? जो कोर सेक्टर की ग्रोथ है उसका क्या महत्व है?
कोर सेक्टर जो खास करके इंडिया में जब कोर सेक्टर की बात करते हैं तो 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, रिफाइनरी के जो उत्पाद होते हैं, खाद है, स्टील है, सीमेंट है, बिजली है, ये सब इसमें है। और ये सब देखिएगा तो इससे पता चलता है कि हमारे जो औद्योगिक उत्पादन है वो इन सबों पर निर्भर करता है। अगर इनकी आपूर्ति ज्यादा होगी, इनकी मांग बढ़ चुकी है, तो इसका मतलब है कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र बहुत अच्छे से उत्पाद कर रहा है, ज्यादा उत्पाद कर रहा है, और ज्यादा उत्पादन में उत्पादन का जो विकास दर है वो विकास दर बहुत अच्छे तरीके से है, और वो अंततः कह सकते हैं कि हमारे पूरे आर्थिक विकास दर को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ऊंचाई की तरफ पहुंचा रहा है।
जो फिगर्स आए हैं, जो आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आर्थिक वृद्धि की जो फिगर्स आए हैं 8.4% क्वार्टरली ग्रोथ, या जीएसटी कलेक्शंस के जो फिगर्स आ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस के फिगर्स आ रहे हैं, या परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के फिगर्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये भी जो आंकड़े आए हैं ये सारे आंकड़े तालमेल खा रहे हैं, इस बात को दर्शा रहे हैं कि हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है?
इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पहले थोड़ा सा संशय होता था, लेकिन एक रिसर्च की तरह देखते हैं तो उसमें लगता है कि अगर आपका एक इंडिकेटर कुछ सिग्नल दे रहा है, कुछ बता रहा है, और उसके बाद दूसरे तीसरे सूचकांक भी उसी तरीके की का आपको आभास दे रहे हैं, तो ये माना जाता है कि एक बताता है तो उस पर शक किया जा सकता है, जब 2-3 उसे बताता है तो उसको कहते हैं कि वो पूर्ण रूप से पुष्टि कर रहा है, उसका कन्फर्मेशन दे रहा है। और अब इस तरह से अगर कन्फर्मेशन मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि मूलभूत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक सुदृढ़ और प्रगतिशील बन चुका है। अगर इसी पे देखें, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसका जो सूचकांक है उसमें ये 8 जो कोर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं इनका 40% से ज्यादा भागीदारी है। तो जिस सूचकांक में 40% से ज्यादा भागीदारी करने वाला अगर एक अच्छे विकास दर को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो जो बड़ा वाला सूचकांक है, जो औद्योगिक सूचकांक है, उत्पाद सूचकांक है, वो भी उसी ग्रोथ रेट को दिखाएगा, उसी को आगे और बड़े तरीके से बताएगा। ये एक कह सकते हैं कि सुखद अनुभूति है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो भी नंबर आएगा वो नंबर एक बहुत इम्प्रेसिव और अच्छा नंबर है।
सो 12 अप्रैल को ये नंबर आने वाला है फरवरी के लिए, जो औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा है। 3.8% वृद्धि हुई थी औद्योगिक उत्पादन में जनवरी में। सो आपको आशा है कोर सेक्टर की ग्रोथ की लेटेस्ट फिगर्स आई हैं उनको देखते हुए कि शायद ये 3.8% वाला आंकड़ा अब बढ़कर फरवरी में 5 या 6% को भी पार कर सकता है?
ये बात तो सही है कि 40% का रिजल्ट अगर आ चुका है, वो एक अपना परिणाम दिखाया है, तो जो 3.8 था पहले फिगर, उससे तो बहुत अच्छा फिगर आगे आएगा। और आप जो 5 या 6% की बात कर रही हैं, अगर वो आ जाता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, बल्कि कह सकते हैं उम्मीद के अनुरूप होगा। लेकिन अभी तुरंत बता पाना कि इतना हो सकता है, क्योंकि एक हाई फ्रीक्वेंसी फिगर है, हाई फ्रीक्वेंसी फिगर में थोड़ी सी मेरी वो सीमाएं हैं।
सो हाई फ्रीक्वेंसी की जो फिगर्स होती हैं, उनमें अगर हम ज्यादा लंबी अवधि को देखते हैं तो शायद मजबूती का और एक कहें कि सुदृढ़ प्रमाण मिलता है। उस संदर्भ में अगर हम देखें तो अभी जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें अप्रैल से फरवरी तक जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ रही है कोर सेक्टर की, वो 7.7% है, 7.7%, जो इससे पिछले वर्ष में इसी अवधि में 6.8% थी, सो ये भी एक प्रमाण है कि कोर सेक्टर में स्वस्थ वृद्धि हो रही है।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें देखिए, जैसे 7.7% था क्यूमुलेटिव अप्रैल पिछले साल से लेके अभी फरवरी तक के फिगर में, और फरवरी का 6.7% है, तो ये जो 1% का डिफरेंस है, यहीं पे अगर ये फरवरी का फिगर जो पूरा का पूरा क्यूमुलेटिव फिगर जो अप्रैल से फरवरी तक का होता, उससे अगर ये बड़ा होता तो निश्चित रूप से हम कह सकते थे, बिल्कुल आश्वस्त होकर कह सकते थे कि अगला फिगर जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल एक बड़ा ग्रुप जो है अप्रैल से फरवरी तक का जो पूरा फिगर है, जो कह सकते हैं कि 11 महीने का फिगर है, 11 महीने का फिगर जो है वो जो संख्या है, वो गति जो है, वो रेट जो है, वो बड़ा है फिगर अकेला फरवरी से, तो आगे अच्छा तो है, पॉजिटिव है, लेकिन अभी इसमें और ग्रोथ की पोटेंशियल है, कह सकते हैं इसकी संभावना ज्यादा है, लेकिन ये संभावना अभी इमीडिएटली नहीं ले पा रहा है। जिसको कहते हैं कि अगर कोई आपको एक ये कह सकते हैं कि विश्लेषण का तरीका यही होता है कि अगर एक छोटे अवधि का फिगर, हाई फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, जैसे मंथ ऑन मंथ बेसिस है, अगर ये फिगर और जो बड़े अवधि का फिगर है अप्रैल से फरवरी का है, इन दोनों के बीच में तुलना करने पे अगर ये फरवरी का फिगर बड़ा होता तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता था कि अब वो फिगर जो है वो बड़े तरीके से बड़े ऊपर पे जाएगा, लेकिन अभी इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं कि संभावना है और ये ऊपर की तरफ जाएगा, कितना ऊपर जाएगा ये देखने के बाद।
संभावना की अगर हम बात करें तो मार्च का महीना जो इनफैक्ट खत्म ही होने को है, लेकिन इसकी फिगर्स जो है कोर सेक्टर ग्रोथ की वो बाद में आएंगी, तो हम क्या आशा कर सकते हैं कि वो काफी उच्च स्तर की आएंगी, क्योंकि ये लास्ट महीना है इस फाइनेंशियल ईयर का और तब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट्स हैं उनको पूरा करते हैं सब सरकारें, ऐसे में आपको लगता है कि मार्च की जो फिगर्स हैं वो भी उत्साहजनक रहेंगी?
यहाँ पर एक चीज देखने की जरूरत यह है कि अभी भी जो ये जो विकास दर आया है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका इस बार प्राइवेट सेक्टर का भी है, जो गैर सरकारी क्षेत्र है, गैर सरकारी क्षेत्र की भी बहुत बड़ा योगदान है। ये योगदान अपने आप में छोटा है, लेकिन ये योगदान इस बात को दर्शाता है कि अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो स्वाभाविक है कि आगे बढ़ेगा। तो जो निजी क्षेत्र है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे, और मार्च जो एक कह सकते हैं कि वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है और हर कोई चाहता है कि जो उसके जो अपने खर्चे हैं, जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहते हैं कि उनका उस अकाउंट ईयर का जो काम है वो पूरा हो जाए, तो उसको उस कंप्लीट करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा उत्पाद करते हैं, और वो उस उत्पादन में ये पूरी संभावना रहती है कि जो मार्च महीने का जो विकास दर होता है वो प्रायः ज्यादा अच्छा होता है। और यहाँ जैसे 3 महीने के बाद विकास दर फिर और गिरने की जगह बढ़ने लगा है, ये उस तरफ द्योतक है कि फरवरी और मार्च दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, मार्च और अच्छा होगा।
जी, आपने बताया जैसे अभी कि 8 है मूलभूत ढांचा क्षेत्र, अगर हम उन पर नजर डालें बारीकी से तो कोयला, प्राकृतिक गैस और सीमेंट, इन सब में दहाई के आंकड़े में वृद्धि हुई है, और कई ऐसे नेचुरल गैस है जिसका जो आंकड़ा है 11.3% वृद्धि का, वो 2 वर्ष का सबसे उच्चतम स्तर रहा है। कोयले का 11.6% 4 महीने का उच्चतम स्तर, क्या कहेंगे आप जो हम अपने पूर्ण अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि देख रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जैसे हमने कहा है विश्व की, उसका पूरा पूरा एक डबल फायदा मिलता है अगर उसमें जो लगने वाले जो बेसिक फैक्टर्स है, स्टील है, सीमेंट है, कोल है, वो अगर भारत के अंदर ही प्रोड्यूस हो तो जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, कंजम्पशन भी क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होती है।
बिल्कुल सही है। देखिए, ये तो जैसे अगर हम भारत के जीडीपी को देखेंगे, उसमें भागीदारी देखेंगे क्षेत्र की तरीके से, तो ये देखा गया है कि सर्विस सेक्टर जो भारत का है, जो वो करीब करीब 53% का भागीदारी रखता है, 53.34% का, एग्रीकल्चर 18.42% का, और इंडस्ट्री जो है 28.25% का। तो भारत के जीडीपी को और आगे सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं, इसे और भी अच्छा और भी आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र की भागीदारी बढ़े, और वो भागीदारी तभी बढ़ेगा जब उस तरह से निवेश भी होगा और उसका उत्पाद भी बढ़ेगा। तो ये जो उत्पाद बढ़ाने के लिए जो भागीदारी जो विनिर्माण क्षेत्र की तरफ जो आगे जाना है, जो औद्योगिक क्षेत्र को और आगे विकास की तरफ ले जाना है, उसमें जो उसको विकास की तरफ ले, उसके जो उत्पादन की तरफ उनको जो सप्लाई करने वाला है, ये कोर क्षेत्र है। और अगर ये कोर क्षेत्र अगर बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, इसका मतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र की तरफ से उनका जो मांग है वो मांग बढ़ रहा है, और ये मांग बढ़ना ये एक शुभ संकेत मान सकते हैं। और ये शुभ संकेत ये है कि अगर इनका उत्पाद, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये लोग लीडिंग इंडिकेटर कहलाते हैं, अगर इनकी मांग बढ़ रही है, इनका उत्पाद बढ़ रहा है, इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो आर्थिक विकास है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। और जैसे कोल, नेचुरल गैस, ये सब आप जो बता रहे थे कि दहाई अंक में है, डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है और अपने पिछले 3-4 महीने में सबसे हाईएस्ट जैसे ग्रोथ रेट रख रहा है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो विकास दर है, ये विकास दर बहुत ही मजबूत मूलभूत विकास की तरफ आगे लेके जाएगा। मैं बार बार इस पर इसलिए कह सकते हैं कि एक स्ट्रेस कर रहा हूँ, इस पर बहुत ज्यादा इसको अंकित कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र का विकास सिर्फ क्षणिक नहीं होता है, छोटे समय के लिए नहीं होता है। अगर इनमें विकास एक अस्थायी विकास हो जाए तो जो दशक के हिसाब से अपने आर्थिक क्षेत्र का विकास काफी आगे बढ़ेगा। हमें थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत जरूर है, लेकिन आप इसको एक कह सकते हैं कि अच्छा और शुभ संकेत की तरह देखा जा सकता है।
एब्सोल्युटली। और अगर उत्पादन बढ़ता है तो एक इसका हम कहें कि निष्कर्ष ये भी निकल सकता है कि जो आयात है उस पर हमारी निर्भरता कम हो रही है और हम ज्यादा से ज्यादा जो ये चीजें हमें चाहिए इंडस्ट्री को, चाहे वो कोयला हो, नेचुरल गैस हो, सीमेंट हो, स्टील हो, क्रूड ऑयल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो हम अपने देश में ही उसका निर्माण कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि अगर स्टील प्लांट्स लगते हैं या सीमेंट प्लांट्स लगते हैं या एक्सपेंशन होती है तो उस क्षेत्रों का भी विकास होता है और जॉब्स का भी विकास होता है।
बिल्कुल, ये सर्वांगीण विकास होता है इनसे। और खास करके अगर जैसे विद्युत की बात करें, हम बिजली उत्पादन में अगर देखें, और बिजली उत्पादन में अब ये जो फिगर है, जो इसका ग्रोथ रेट है, ऐसे इसका ग्रोथ रेट बिजली का इस बार 6.3% ही रहा है इस फरवरी मंथ में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी जो कि इंक्लूड करके दिखा रहे हैं, और भारत धीरे धीरे जो हाइड्रोकार्बन से, फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहा था उससे धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा ये है कि हम इसमें हमारी जो दूसरे देशों पर निर्भरता है, जो तेल उत्पादक देशों पर निर्भरता है, वो धीरे धीरे खत्म होगा। और वो जब खत्म होगा तो जो विकास के लिए जो सबसे बड़ा बल चाहिए वो ऊर्जा बल है। और ऊर्जा बल अगर अपने देश के अंदर अस्थायी रूप से मिलने लगे, और वो तकनीकी के द्वारा ही, जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी भारत में कह सकते हैं अपार भंडार है। हम वैसा देश है जहाँ के करीब करीब सालों भर हम इसको ले सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस तरफ जो जा रहा है, और ये जो विकास दर है, ये विकास दर एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है भारत के बहुत लंबे समय के विकास दर को बनाए रखने के लिए, और कह सकते हैं कि दहाई अंक में विकास दर को बनाने के लिए ये सब बहुत आवश्यक है।
विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं कोर सेक्टर ग्रोथ के, उनके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे देश के बुनियादी उद्योगों की उल्लेखनीय वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक कुमार विजय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।